अशासकीय शिक्षण संस्थाओं का भविष्य अंधकारमय। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। साथियों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उन अशासकीय शिक्षण संस्थाओं की जो अभी एक तो बंद होने की कगार पर है या बंद हो चुकी है। इस संबंध में हमारे साथ रूबरू होने जा रहे बहुउद्देश्य शिक्षण संस्था बिच्चुआ बग्गू द्वारा संचालित अशासकीय माध्यमिक शाला सत्य अनुसाया के आदरणीय धवले सर। नमस्कार सर जी।
सर नमस्कार।
सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान में अशासकीय शिक्षण संस्थाओं की क्या स्थिति है।
अभी वर्तमान में अशासकीय शिक्षण संस्थाओं की बहुत ही दयनीय स्थिति है। बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा संचालित शालाएं तो बंद हो गई है अधिकांश, और बहुत ही अंश रूप में कम शालाएं बची हुई है। और वो इसलिए ऐसा ये कंडीशन आई है, ये परिस्थिति इसलिए आई है कि हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने अशासकीय संस्थाओं के द्वारा संचालित शालाओं का अनुदान बंद कर दिया गया था। उसके विरोध में पूरा शिक्षक संघ, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ अशासकीय शिक्षण संस्थाओं का, हाईकोर्ट में अपनी अर्जी लेकर पहुंचा था, जहां पर 9 साल में उनको, 2 ही साल में जबलपुर हाईकोर्ट ने उनको जिता दिया था, हम जीत गए थे। परंतु माननीय सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां पर करीब करीब 9 साल तक हम लड़ते रहे, आखिर हम जीत गए। परंतु वहां पर ये कैसा हमारे विरोध में ऐसा कुछ निकाल आया है कि संस्था अब इसके बाद किसी नवीन शिक्षकों की भर्ती नहीं करेगी। इसलिए जो मान्यता प्राप्त जो शिक्षक थे जो ग्रांट में, वो जब तक कार्यरत है तब तक ही शालाएं चल रही, और अभी ग्रांट के अभाव में, वित्त के अभाव में सभी शालाएं बंद हो रही है।
सर जी, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जिस समय सरकार ग्रामीण आदिवासी अंचलों में शालाएं खोलने में असमर्थ थी, ऐसी जगहों पर सामाजिक संस्थाओं ने शालाएं खोली। आज वर्तमान में बापा उन्वासी सेवा मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना की भी वही हाल है, सत्य अनुसार माता माध्यमिक शाला बिच्चुआ बग्गू के भी वही हाल है, राधा देवी में भी वही हाल है, और नई नियुक्ति हो नहीं रही है। तो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए, हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं।
अब ये है, सरकार का कदम ये होना चाहिए, अभी अब देखिए, अब आ रहा है थोड़ा सा पॉलिटिक्स में। अभी वर्तमान में जो सरकार है, उस समय ये सरकार नहीं थी और किसी दूसरी पार्टी की थी, तब ये लोग हमारे साथ में थे, हमारे फेवर में आवाज उठाते थे विरोधी पक्ष में रहकर। और जब ये सरकार में आए तो इनको ये समझना चाहिए था, इनके उपस्थिति में ये सब हो रहा है, शालाओं का जो सत्यानाश जो हो रहा है, ये इनके होते हुए हो रहा है, तो इनको वो सरकार, मतलब कोर्ट का जो आदेश है उस पर थोड़ा सा गौर करके यदि नवीन भर्ती करने का यदि आदेश दे दें, या तो जो जितनी शालाएं हैं वो शालाएं वो अपने अनुग्रहित कर ले अपने सरकार में, तो सब शालाओं का और शिक्षकों का उद्धार हो सकता है। यदि कुछ थोड़ी सी भी उनमें दया यदि होंगी उनके हृदय में, तो ये वर्तमान की सरकार का यह कर्तव्य बनता है, मगर वो कर नहीं रहे, इसलिए आंदोलन की आवश्यकता है।
सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि सरकार का कहना है अब कि भाई मातृभाषाओं में भी शालाएं संचालित होगी, तो यदि हम बात करते महाराष्ट्र लगे छिंदवाड़ा सिवनी बैतूल बालाघाट जिले की, तो यहाँ पर मराठी भाषा का प्रभाव है और यहाँ पर पहले मराठी भाषा में शालाएं संचालित थी जो बंद हो चुकी है, इस संबंध में आपका क्या कहना है?
अब वो ऐसा है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में अपितु पूरे भारत वर्ष में हिंदी को राष्ट्रभाषा मान चुके हैं, इसलिए अब हिंदी में भाषा चल रही, हिंदी में शालाएं चल रही है, वो उतना बड़ा भारी कोई विषय बनता नहीं है। आजकल हिंदी भाषा सब लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो उससे कोई बड़ा भारी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि हिंदी में भी, हिंदी माध्यम से यदि शालाएं चली तो चल सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है।
सर आपसे एक अंतिम प्रश्न कि आपने बौद्धिक शिक्षण संस्था बिचवा बग्गू के माध्यम से सत्यानुषा माध्यमिक शाला में कार्य किया, तो अभी वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है, पारिवारिक स्थिति और शासन की तरफ से आपको क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही है?
अब ये तो मध्य प्रदेश छोड़िए करीब करीब आधा हिंदुस्तान जानता है कि हिंदुस्तान में एक मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शालाओं का जितनी शालाओं की जो दुर्गति है वो पूरा मध्य प्रदेश जानता है, क्योंकि इन्होंने शिक्षक रिटायर होने के बाद में ना ग्रेजुएटी प्रदान की है और ना उन्होंने कभी ये सब टालते रहे और ना कोई पेंशन है। तो अब स्थिति क्या हो गई होंगी तो ये तो साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई सरकार की तरफ से किसी प्रकार के हमको जैसे रिटायरमेंट के बाद में एक नए पैसे के हम देनदार है या लेनदार नहीं है उनके, और वो इसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार बहुत बहुत कठोर है।
हम आपसे
स्थिति मतलब बदतर है सभी शिक्षकों की, कुछ लोग तो बेचारे मर गए हैं। बोलिए
हम आपसे सिर्फ इतना और जानना चाहेंगे कि यदि शासन आपके पक्ष में और शासकीय शिक्षण संस्थाओं के पक्ष में यदि कोई निर्णय नहीं लेता तो आपके संगठन का अगला कदम क्या होगा?
अगला कदम हम अभी भी वैसे भी हम न्यायालय की शरण में है, हमारी याचिका चल रही है यहाँ पर हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्याय के राह में हम बैठे हुए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना अमूल्य समय देकर उन शालाओं के ऊपर अपना ध्यान आकर्षण किया जहाँ सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम आपका पुनः एक बार धन्यवाद करते हैं।
आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारे शासकीय शिक्षण संस्थाओं की दशा को देखकर आपने हमारी याद को की। धन्यवाद।